Formchen. तीसरा कल्प, अपने को कल्प कल्प की पूज्य आत्माएं अनुभव करते हो। स्मृति है कि हम ही पूज्य थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। पूज्य बनने का विशेष साधन क्या है? कौन पूज्य बनते हैं? जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं और श्रेष्ठ कर्मों का भी फाउंडेशन है दृढ़ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, पवित्रता। और श्रेष्ठ कर्मों का भी फाउंडेशन है श्रेष्ठ स्मृति। और पवित्रता बोल दिया, और पवित्रता बोल दिया, और श्रेष्ठ श्रीमत। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है श्रीमत। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है दिव्य बुद्धि। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है दिव्य गुण। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है परमात्म प्रेम। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है शक्तिशाली याद। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पावरफुल अमृत वेला। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है श्रेष्ठ ज्ञान। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है न्यारापन, डिटैचमेंट, वैराग्य। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है सन्यास। कल बोला ना, तुम सारे दुनिया का सन्यास करते हो और विकारों से वैराग, बेहद का वैराग। तो बाबा कहते हैं जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं और श्रेष्ठ कर्मों का भी फाउंडेशन है पवित्रता। पवित्रता पूज्य बनाती है। अभी भी देखो जो नाम से भी पवित्र बनते हैं वो पूज्य बन जाते हैं, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य तो प्रथम सोपान है, पहली स्टेप है, फर्स्ट सीढ़ी है, मंजिल बहुत आगे है। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, इसमें ही सिर्फ श्रेष्ठ नहीं बनना, यह भी श्रेष्ठ है, लेकिन साथ में और भी पवित्रता चाहिए। अगर मनसा संकल्प में भी कोई निगेटिव संकल्प है तो उसे भी पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए किसी के प्रति भी निगेटिव संकल्प नहीं हो। क्या भी कहे, क्या भी करे। इसलिए किसी के प्रति भी निगेटिव संकल्प नहीं हो। अगर बोल में भी कोई एक शब्द निकल जाते हैं जो यथार्थ नहीं है उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। यदि संकल्प और बोल ठीक हो लेकिन संबंध संपर्क में फर्क हो, किससे बहुत अच्छा संबंध और किससे अच्छा नहीं हो, उसे भी पवित्रता नहीं कहेंगे। किसके साथ बनती है, किसके साथ नहीं, कोई अच्छा लगता है कोई अच्छा नहीं लगता है,
सबके साथ समान होना।
तो ऐसा मनसा वाचा कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में पवित्र हो तो मनसा में पवित्रता। कोई भी निगेटिव संकल्प नहीं, कोई नकारात्मक संकल्प नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं किसी के प्रति। मनसा वाचा पवित्रता, कोई ऐसे शब्द ना निकल जाए जो यथार्थ नहीं है। जो देही अभिमानी है, कुछ दिन पहले था ना मंडे, देह अभिमानी है उनके बोल अनर्थ, देह अभिमानी अनर्थ, देही अभिमानी है उनके बोल अर्थ सहित। जो देह अभिमानी है उनके बोल अनर्थ है। अनर्थ अर्थात जिसका अर्थ नहीं, जो अर्थहीन। तीन अर्थ है अनर्थ के, एक तो जिसका अर्थ नहीं जो अर्थहीन है, दूसरा है अनर्थ अर्थात आपदा, तीसरा अनर्थ अर्थात अशुभ, अनर्थ हो गया। तो बोल भी अर्थ सहित, तीसरा संबंध संपर्क, इसमें कोई अच्छा लगता है कोई अच्छा नहीं लगता, ये पवित्रता नहीं है। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, ये चार है। और पांचवा, और भी कोई पवित्रता है? मनसा में बहुत सारी बातें, संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशंस, स्वप्न, भावनाएं, कल्पनाएं, फैंटेसी, जो विजुअलाइजेशन है वो कल्पना क्रिया से अधिक शक्तिशाली होती है। वासनाओं की कल्पना से वही सब कुछ होता है जो क्रिया से होता है। शरीर में वही सारी प्रक्रिया होती है जो कि वास्तविक क्रिया से होती है। तो अशुद्ध कल्पनाएं, अशुद्ध संकल्प, अशुद्ध वृत्ति, अशुद्ध दृष्टि, आज बाबा ने कहा विकारों की वास चली जाए, देह का भान और विकारों की वास। लोग तो डरते हैं, जैसे ही सुनते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनते ही डर लगता है उनको, भागते हैं वो लोग, भाई बहन बनाते हैं। बाबा ने कहा बीके बनना तो अच्छा है ना, ऐसे पूज्य हो। अगर मानो कोई भी बात में कमी है तो उसको खंडित कहा जाता है, और खंडित मूर्ति की क्या पूजा नहीं होती है, कहाँ रखी जाती है खंडित मूर्ति? म्यूजियम में। म्यूजियम में कौन देखने जाता है उसे? भक्त और श्रद्धालु जाते हैं क्या म्यूजियम में? कम जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, जो सैलानी है वो जाते हैं, पर्यटक जाते हैं वहां पर, चप्पल पहनकर झुकते हैं मंदिर मूर्ति के सामने, म्यूजियम की फोटो लेते हैं बस। और भक्त जब जाता है तो कैसा जाता है? नतमस्तक, चप्पल बाहर, नतमस्तक होकर जाता है, झुकता है, चाहे संसार में कितना भी बड़ा हो पर मूर्तियों के सामने तो झुकता है। प्रसाद चढ़ाते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, वंदनम, अर्चनम, वो तो पैसों के लिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, इसलिए जरा भी मनसा वचा कर्मणा में खंडित नहीं हो अर्थात अपवित्रता न हो, तब कहा जाएगा पूज्य आत्मा। तो ऐसे पूज्य बने हो, जड़ मूर्ति भी खंडित हो जाती है तो पूजा नहीं होती, उसको पत्थर मानेंगे, मूर्ति नहीं, मंदिर से हटा दिया जाता है, स्थानांतरित कहाँ कर दिया जाता है? म्यूजियम में। पूरा नहीं है, म्यूजियम में रखेंगे, मंदिर में नहीं रखेंगे, मंदिर तो पवित्र स्थान होता है, मंदिर का पूरा पर्यावरण, संपूर्ण वातावरण को पवित्र कहा जाता है। वो दिखाए ना रामानुजाचार्य जो होते हैं ना, ब्रह्मा बाबा रामानुज वल्लभाचार्य के, उनके पहले एक रामानुजाचार्य हुए हैं, बहुत ज्ञानी, साउथ में विशिष्ट अद्वैत की जिसने स्थापना की है। वो दिखाया है कि वो एक दिन मंदिर की परिक्रमा करते रहते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर की परिक्रमा, अमृत सुबह सुबह, अमृत वेले नहीं, सुबह सुबह, तो अचानक एक चांडाल स्त्री सामने आ जाती है, तो वो अचानक उसको कहते हैं कि हे चांडाल स्त्री हट यहां से, अपनी अपवित्रता को मेरे मार्ग में मत ला। उसके होठों पे जो प्रभु के गीत होते हैं विष आ जाता है, जो मन में पवित्र भाव होते हैं वहां पर क्रोध आ जाता है। तो वो चांडाल स्त्री कहती है कि हे प्रभु मुझे बताइए मैं अपनी पवित्रता को किस ओर हटाऊं, ये पवित्रता के प्रांगण में तो जहां तहां पवित्रता ही पवित्रता है, आप मुझे बताओ मैं अपनी पवित्रता को किस ओर हटाऊं। तो उसके आंख खुलती है, मतलब वहां तो ये दिखाते हैं ना कि भगवान सब जगह है, या फिर पवित्रता मंदिर में सब जगह है, तो मंदिर के प्रांगण की का भी कितना महत्व है। तो वो कहता है कि जब तक अंतर में अपवित्रता है थोड़ा सा अंश, तो ही हमको अपवित्रता बाहर भी दिखती है, अगर अंतर संपूर्ण पवित्रता है तो बाहर पवित्रता ही दिखेगी। अगर अब तक भी हमें अपवित्रता दिख रही है वो सूचना है अंतर के अपवित्रता की। भगवान आता है तो क्या देखता है? हाँ क्या? हाँ अगर अभी तक भी दोष दिख रहा है तो अंदर ही दोष है। अभी तक भी हमें अपवित्रता दिख रही है तो शायद अंदर में अपवित्रता है, इसके लिए तो दिख रही है। तो तो ऐसे पवित्रता का फाउंडेशन चेक करो, कोई भी संकल्प आए तो स्मृति में लाओ मैं परम पूज्य आत्मा हूं, केवल पूज्य नहीं परम पूज्य आत्मा हूं। ऐसी आत्माएं जिनका दर्शन करने बाप परमधाम से आते हैं, संडे मुरली में बाबा ने कहा है तुम अब तक दर्शनों के लिए जाते थे, अभी तुम्हारे दर्शन के लिए, दर्शन अर्थात देखना, दर्शन अर्थात मिलन मिलना, तो बाप तुम्हारे दर्शन के लिए आते। कितनी महान आत्मा होगी जिसके दर्शनों के लिए भगवान आते हैं। दर्शन बहुत ऊंचा शब्द है भक्ति का। तो यह याद रहता है या जिस समय कोई बात आती है उस समय भूल जाता है, पीछे याद आता है फिर पश्चाताप होता है? ऐसा नहीं करते तो बहुत अच्छा होता, पश्चाताप नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, बोल दिया। जो बोले हुए शब्द है, एक है बोले हुए शब्द एक है न बोले हुए शब्द। जो बोले हुए शब्द है उनका ही पश्चाताप होता है, जो न बोले हुए शब्द है उनका कम पश्चाताप होता है। मन में भाव उठा परंतु व्यक्त नहीं किया, मन में क्रोध आया परंतु किसी ना किसी कारण से रोक दिया, रोक दिया, परंतु जो बोल दिया वो उसका पश्चाताप ज्यादा होता है बाद में। ये उन आत्माओं के लिए है श्रीमत्, संसारी आत्माओं के लिए बोल देना अच्छी बात है एक रीति से, क्योंकि वो दबा देंगे तो और कुछ और तैयार हो जाएगा। यहाँ जो बोले हुए शब्द है उनका अधिक पश्चाताप होता है, जो ना बोल दिया फिर उसका हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि वह क्षणिक भाव उत्पन्न हुआ था केवल, जिसको हम ज्ञान से अपने आप को समझा सकते हैं। हाँ तो क्या होता है फिर पश्चाताप होता है, ऐसा नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। तो सदा पवित्र आत्मा हो, पावन आत्मा हो, पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, पावन आत्मा, पवित्रता, शुद्धता, पावनता, निर्विकारिता, निर्मलता, शुचिता, पवित्रता अर्थात स्वच्छता। स्वच्छता कितनी प्यारी लगती है, अगर मंदिर भी हो मूर्ति भी हो लेकिन स्वच्छता नहीं हो तो अच्छा लगेगा? तो मैं पूज्य आत्मा इस देह रूपी मंदिर में विराजमान हूं, यह स्मृति सदा जीवन में लाओ, फिर सोचो नहीं, लेकिन सिर्फ सोचो नहीं लेकिन जीवन में लाओ। सोचते तो बहुत है ना, ये भी हूं ये भी हूं, बहुत सोचते हो ये हूं वो हूं ऐसे हूं वैसे हूं, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव में आए। सुनना सुनाना फर्स्ट स्टेप, अनुभवी मूर्त बनना लास्ट स्टेप है। तो क्या याद रखेंगे? संपूर्ण पूज्य आत्मा, परसेंटेज में नहीं, 80% पूज्य और 20% खंडित, ऐसे नहीं। तो 100% पूज्य अर्थात 100% पवित्र। सभी को स्वच्छता अच्छी लगती है या कचरा अच्छा लगता है? तो अपने से पूछो कि मन स्वच्छ बना है, बुद्धि स्वच्छ बनी है? वो करते हैं हाथ की सफाई, तुम्हारी है बुद्धि की सफाई, मन की सफाई, निर्मल मन, स्वच्छ हृदय। कैसे होगा वो? परमात्मा प्रेम से होगा। जितना उसमें परमात्मा प्रेम भरेगा उतना ही हृदय स्वच्छ होगा, पवित्र होगा। तुलसीदास कहते हैं ना, राम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कब होना चाहिए। राम भगति जल, जब राम की भक्ति का जल जब तक नहीं मिलता है, अभियंतर मल कब होना चाहिए, जब तक वो पवित्र जल परमात्मा स्नेह का, परमात्मा प्रेम का जल नहीं है, तब तक ये मलिनता कभी नष्ट नहीं होगी। या थोड़ा थोड़ा स्वच्छ बनी है, थोड़ा थोड़ी अस्वच्छ है। अगर यहाँ कचरा पड़ा हो तो आप उस पर बैठेंगे? तो जैसे वो वैसे क्या? अगर यहाँ कचरा पड़ा हो तो आप उस पर बैठेंगे? उस पर बैठना अच्छा नहीं लगेगा ना, तो ऐसे सोचो कि जरा भी अपवित्रता अर्थात कचरा है तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल हृदय है केवल वही मुझे प्रिय है, मोहि कपट छल छिद्र मुझे प्रिय नहीं है। ऐसा जो हृदय है वो मुझे प्रिय नहीं है। बाइबल में एक जगह लिखा है, दो वाक्य है, ब्लेसेड आर द मीक इन हार्ट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ अर्थ। जो विनम्र है वह धन्य भागी है क्योंकि धरती का राज्य उनका है। दूसरा एक महावाक्य है, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। वो धन्य है जो पवित्र है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। विनम्रता पहली सीढ़ी है, पवित्रता जैसे अंत है। जो विनम्र है उनका धरती का राज्य है, जो पवित्र है उनका स्वर्ग का राज्य है। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। तो जरा सोचो, सोचो जरा भी अपवित्रता अर्थात कचरा है तो बाप को अच्छा नहीं लगेगा। कचरा है तो बाप के प्यारे तो नहीं हुए ना, बाप को अच्छा ही नहीं लगता कचरा। गीता में लिखा है कि पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। गीता में परमात्मा अपनी विभूतियां बताते, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। उसमें दिखाया है कि जो कुछ श्रेष्ठ है इस संसार में वो मैं हूं, वो मेरी विभूति है। तो पवित्र करने वालों में उदाहरण दिया है पवित्रता के साथ वायु का। वायु अर्थात जो कहीं ठहरती नहीं है, जिसका कहीं लगाव नहीं है। जो कहीं ठहर गया उसका लगाव उत्पन्न होगा। जहां लगाव है, जहां ठहराव है, वहां पर पवित्रता नहीं है। तो पवित्रता अर्थात कहीं ठहरना नहीं है। इसके लिए महावीर ने अपने सन्यासियों को 3 दिन से ज्यादा कहीं रुकने की अनुमति नहीं दी है। 3 ही दिन रुकना, क्योंकि मनोविज्ञान ने भी यह सिद्धांत को स्पष्ट किया है कि व्यक्ति किसी भी स्थान पर एडजस्ट सेटल होने के लिए 3 दिन या कभी कभी ज्यादा भी लगता है। नए कमरे में हम चले जाए तो 3 दिन थोड़ी बेचैनी से रातें कटेगी, 4थे दिन थोड़ी अच्छी नींद आती है। फिर इससे पहले कि अच्छी नींद आए इससे पहले कि लगाव उत्पन्न हो, इससे पहले कि कोई अच्छा लगने लगे, इससे पहले कि मन कहीं ठहर जाए, ये ठहराव, ये रुका, ये रुकना, ये आदत 3 दिन लगते है कोई भी चीज के लिए, मनोविज्ञान कहता है। उससे पहले निकलो आगे। तो वायु पवित्रता का प्रतीक है, कहीं नहीं ठहरती। अगर कहीं ठहर जाए तो भी अपवित्र हो जाए, पर ठहरती नहीं है। स्पर्श नहीं करती किसी को, किसी से आसक्ति नहीं है उसकी, किसी से लगाव नहीं है उसका, कहीं ठहराव नहीं, कहीं झुकाव नहीं, बस प्रवाह है। जो प्रवाहवत जीवन है वह पवित्रता है। कहीं रुकना नहीं, किसी को पकड़ के नहीं रखा है वायु ने, किसी बात को, किसी चीज को, किसी परिस्थिति को, किसी स्मृति को, अतीत की, भूत की। प्रवाह है। उसी तरह नदी में भी प्रवाह है, नदी में भी प्रवाह है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि नदी में आप एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते हो। कर सकते हो? एक ही नदी में, क्योंकि वो प्रवाह है। जो अब डाला अभी उसके बाद वो दूसरा है। तो नदी भी पवित्रता का प्रतीक है। अगर नदी कहीं रुक जाए, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, पडल, डबरा, एक जगह, तालाब, तालाब जो है उसका जो पानी है उसमें दुर्गंध और सड़ांध उत्पन्न हो सकती है, परंतु नदी पवित्रता का प्रतीक है क्योंकि उसमें प्रवाह है। प्रवाहवत जीवन है उसका, वो बहती रहती है, बहती रहती है। तो पवित्रता का वायु से भी कनेक्शन, वायु के लिए प्रतीक वायु और नदी, जल नहीं, नदी। स्वच्छता, गंगा को ऐसे ही थोड़ी मानते हैं, भारत में मां समझते हैं ना। ब्राह्मण बने ही हो बाप का प्यारा बनने के लिए। पूज्य आत्माएं सर्व की प्यारी है, जड़ मूर्ति है लेकिन कितनी प्यारी लगती है। अपने चैतन्य परिवार से इतना प्यार नहीं होगा जितना मूर्ति से प्यार होगा। घर में लड़ाई झगड़ा करेंगे परंतु मूर्ति के सामने बहुत प्यार करेंगे, बहुत तारीफ करेंगे मूर्ति की। आपस में झगड़ेंगे लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे, इतना प्यार है मूर्तियों से। मूर्ति पूजा क्यों प्यार करते हैं? क्यों करते हैं प्यार? पवित्रता है। पवित्रता है ना। एक व्यक्ति, एक पति अपने घर में आता है और देखता है उसकी पत्नी जोर जोर से रो रही है, जोर जोर से रो रही है, जोर जोर से रो रही है। वो आके चुपचाप बैठता है, अपना काम काल चालू करता है। तो कहती है, तो मुझे पूछते भी नहीं हो कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो कहता है, सारी उम्र पूछता रहा, इसके लिए तो मेरा ये हाल हो गया। तो आपस में झगड़ेंगे लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे। क्यों प्यार करते हैं? पवित्रता है ना। पवित्रता अर्थात जरा भी अपवित्रता नहीं हो। सभी को सुनाते हो ना, क्या सुनाते हो? अगर एक बूंद भी विष की एक मण दूध में पड़ जाए तो सारा विष हो जाएगा। कितना शक्तिशाली है केवल एक बूंद। और एक गिलास अगर विष है उसमें एक बूंद दूध की पड़ जाए तो पता भी नहीं पड़ेगा। तो हमारा मन ऐसा ही है, विष से भरा हुआ प्याला, विषैला प्याला। जन्म जन्म की वासनाएं उसमें भरी पड़ी है, जन्म जन्म का नकारात्मक भाव उनमें पड़ा है, जन्म जन्म की सोच उसमें समाहित है अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में। वो जो स्टोर हाउस है, जो तहखाना है अवचेतन मन का, उसमें इतनी सारी चीजें पड़ी हुई है कि हमको तो पता भी नहीं उसका क्या है। उसमें इतनी सारी चीजें, जब टॉर्च लेके जाओगे और फोकस करोगे किसी चीज पर, तब पता चलेगा ये वो है। स्मृति की टॉर्च सब कुछ है, पर आत्मा को कुछ नहीं भूलता। आत्मा को सब याद है, सब कुछ। सब कुछ माना सब कुछ। अगर आप इसके पीछे पड़ जाओ तो याद आ जाएगा। आप अगर ये कहो कि 1 जनवरी 2002 में मैं क्या कर रहा था, दिन रात इसी चिंतन में लग जाओ, 1 जनवरी 2002 में मैं क्या कर रहा था, 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 एक समय आएगा कि सुबह से लेकर रात तक जो कुछ किया वो सामने दिखेगा। पर वो बाढ़ आएगी, फिर उसे रोक नहीं पाओगे। बताया था ना। हाँ, तो सब कुछ आत्मा में है परंतु अभी विस्मृति में। सब कुछ जो कुछ किया है तो उसमें वो सब भी है, फिर वो पवित्रता के संस्कार भी है। जब हम देवता थे वो संस्कार भी है। बाबा ने कहा है कि तुम्हारे लिए पवित्रता बहुत सरल है, क्योंकि बाप ने स्मरण दिलाया है 3 चीजों का, जो कि संसार में किसी के पास वो स्मरण नहीं है। संसार का अध्यात्म तो तुम आत्मा हो यहां तक खत्म हो जाता है, बस इसके आगे नहीं है। सारा अध्यात्म जो भी है वो आत्मा में आकर रुक जाता है। बाबा ने इसके अलावा 3 और स्मृतियां दी है कि तुम्हारा मूल स्वरूप ही पवित्रता है। तुम ही परम धाम में जब थे तो संपूर्ण पवित्रता की अवस्था थी। इस धरा पर तुम देवता थे, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, जो पूजनीय और वंदनीय है वो तुम थे। ये 3 ही स्मृतियां दिला दी और हमको सहज बना दिया पवित्रता। ये स्मृतियों से ही सहज बना दिया। बाप ने आकर किया क्या है, स्मृतियां ही तो दिलाई, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, तुम ये थे और फिर तुम ये बनने वाले हो। तो सभी को सुनाते हो ना कि अगर एक बूंद भी विष का एक मण दूध में पड़ जाए तो सारा विष हो जाएगा। ऐसे अगर जरा भी अशुद्धि है तो कौन सी आत्माएं कहलाएंगे, अशुद्ध या शुद्ध? कौन सी आत्माएं कहलाओगे? कहेंगे आधे हाफ कास्ट है। तो सदा हर कर्म करते, संकल्प करते, बोल बोलते ये चेक करो कि बाप को प्यारे कौन, पवित्र आत्मा या मिक्स आत्मा, कौन उसको प्यारे है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है। संपूर्ण पवित्रता उसे सबसे अधिक प्रिय है, चाहे उसमें बहुत सारे अवगुण है, बाकी सब चीजों में ढीला ढाला है, परंतु पवित्रता उसने धारण की है तो उसे प्रिय है। संडे कहा ना बाबा ने, मध्यम पुरुषार्थी हो फिर भी बाप को संसार से श्रेष्ठ है, अलबेला पुरुषार्थी है फिर भी बाप को प्रिय है। तीव्र पुरुषार्थी तो है ही है, परंतु अलबेला भी है और ढीला वाले जो है वो भी उसको प्रिय, क्योंकि पवित्रता को धारण किया है, जिसे संसार असंभव समझता है। और इस कलयुग के वातावरण में जहां की हवाओं में वासनाएं हैं, ऐसे वातावरण में जिन्होंने पवित्रता को धारण किया वो कोई साधारण आत्माएं नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं पवित्र आत्मा प्यारी है, क्योंकि बाप सदा परम पवित्र है तो उसको प्यारी भी पवित्रता लगती है। तो इस वर्ष में क्या करेंगे, जरा भी खंडित नहीं, सदा परम पूज्य, तो हमारी पवित्रता सदा ही अखंड रहे, ना तो संकल्प में, ना तो स्वप्न में, ना तो वृत्ति में, ना तो वाइब्रेशंस में, ना तो बोल में, ना तो संबंध संपर्क में, कहीं पर भी वो खंडित ना हो। नहीं तो अपने लिए कोई म्यूजियम चुन लो, कहां रखेंगे, मंदिर चुनना है या म्यूजियम, कमाल करके दिखाएंगे ना, कि सोचेंगे देखेंगे नहीं, करेंगे हाथ उठाने का, फोटो निकल रहा है, अच्छा है। बाप को, बाप तो सदा ही बच्चों में निश्चय रखते हैं, बहुत अच्छा, और बढ़ते चलो, उड़ाते चलो। सो वोटे वो अव्वल नंबर अर्जुन, बाप तो सबकी अव्वल नंबर ही देखते हैं, सेकंड थर्ड तो नहीं आना है ना, कि चलो पर उपकार करते हैं, उसको पहला नंबर देते हैं, परोपकारी बनना ना, आगे बढ़ने दो, दूसरों को बोलने दो, हम तो पॉइंट बोलते रहते हैं, इनको बोलने दो। पुरुषार्थ में रेस भले करो, और बातों में रेस नहीं। तो सिर्फ पूज्य नहीं, परम पूज्य आत्मा हो यह सदा स्मृति में रहे। कौन सी आत्मा हूं मैं, परम पूज्य आत्मा हूं, श्रेष्ठतम आत्मा हूं। देखना यह पूज्य कहकर, देखना यहां पूज्य कर जाओ और वहां खंडित हो जाओ, ऐसा मत करना, खंडित नहीं होना। फिर कहो कि ठोकर लगी तो खंडित हो गए, क्या करें, मूर्ति को ले जा रहे थे ठोकर लग गई, मूर्ति टूटी। कितना भी कोई ठोकर लगाए लेकिन खंडित नहीं हो, चाहे कितना भी बड़ा मोटा हैमर लगाए, लेकिन खंडित नहीं होना। मोटा हैमर तो पक्का याद रखेंगे ना, देखेंगे रिजल्ट। तो पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, पवित्रता का व्रत धारण किया इसमें सिर्फ श्रेष्ठ नहीं बनना, यह तो श्रेष्ठ है लेकिन साथ में और भी पवित्रता चाहिए। तो सर्वांगीण पवित्रता का विकास करना है हमको अपने अंदर, संपूर्ण पवित्रता, सर्वांगीण पवित्रता, हर बात में पवित्रता, क्योंकि तुम्हारे जो कर्म है वही चरित्र बनते हैं, तुम्हारे कर्मों का चरित्र के रूप में गायन है। जैसे बाप के कर्म चरित्र बनते वैसे तुम्हारे भी कर्म चरित्र बनते। तो प्यूरिटी ही सब कुछ है इस यज्ञ का, प्यूरिटी ही पर्सनैलिटी है, हमारा व्यक्तित्व है, प्यूरिटी ही रॉयल्टी है, हमारी शालीनता है, प्यूरिटी ही ह्यूमिलिटी है, प्यूरिटी ही ऑनेस्टी है, प्यूरिटी ही ब्यूटी है, प्यूरिटी ही पब्लिसिटी है, प्यूरिटी ही रॉयल्टी, रॉयल्टी है, पब्लिसिटी है, ब्यूटी है, रियलिटी है, प्यूरिटी ही एक्यूरेसी है, और ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, ह्यूमिलिटी है, सब कुछ प्यूरिटी है, इधर स्टेबिलिटी भी है। तो इतना प्यूरिटी का यहाँ महत्व है। तो बाबा कहा उसमें खंडित मूर्ति नहीं बने, चाहे कोई कितना भी मोटा और बड़ा, मोटा और बड़ा हैमर लगाए तो भी मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मंदिरों में पूजा नहीं होगी। भक्त जिनके दर्शनों के लिए प्यासे हो वो तुम हो, भक्त प्यासे है दर्शनों के लिए, प्यास होती ना, प्यास, सच्चे भक्त जो होते, शुद्ध भक्त होते, पवित्र भक्त होते, उनको प्यास होती है, प्यास, वो तुम हो। मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वो तुम हो। तो मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पूज्य आत्मा हूं, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं पवित्रता का अवतार हूं, मैं अवतरित हुआ हूं इस तन में, इस धरा पर पवित्रता की स्थापना करने के लिए। सारे पवित्रता से संबंधित जितने समान है वो सारे हम निरंतर स्मरण करते रहे, निरंतर याद करते रहे। अच्छा, ओम शांति।
चार तो बताया,
श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, पूजनम। पूजनम नहीं, उसमें आता है निवेदनम, आत्म निवेदन। एक है आत्म निवेदन, फिर उसके बाद है दास्य, एक है समर्पणम। कितने हो गए? नवदा भक्ति और एक कोई है ऐसे सात। ये है भागवत में लिखे हुए नवदा भक्ति। तुलसीदास ने लिखी हुई नवदा भक्ति अलग है, रामचरितमानस की प्रथम भक्ति संतन कर सेवा वो अलग है, जो शबरी को श्री राम ने सुनाई है उसमें वो अलग प्रकार की नव भक्ति है। सत्संग करना, परमात्मा के गीत गाना, ये भागवत की लिखी हुई नव प्रकार की भक्ति, वो अलग प्रकार की भक्ति है। वो पांच प्रकार की अलग भक्ति है। भक्ति बहुत सारे कैटेगरी है। एक भक्ति है पराभक्ति और वैधि भक्ति। परा अर्थात सब सर्वोच्च, और वैधि अर्थात जिसमें कर्मकांड वो सब हो। जो ऊंची भक्ति है, जो मीरा और चैतन्य महाप्रभु और तुकाराम इनकी जो भक्ति है वो पराभक्ति है। उससे नीचे है एक वैधि भक्ति, ये एक कैटेगरी। दूसरी है नहीं, ये दूसरी दो। फिर दूसरी कैटेगरी है भक्ति की, पांच प्रकार की भक्ति, अलग अलग संबंध। जैसे एक भक्ति है वात्सल्य भक्ति, जो यशोदा और श्री कृष्ण का। एक है सखा भक्ति, अर्जुन और कृष्ण की। एक है मधुरा भक्ति, पति मानना ईश्वर को। एक है शांत भक्ति, जो संतों की है। एक है दास्य भक्ति, हनुमान और राम की। ये पांच प्रकार की अलग भक्ति, वो दो प्रकार की अलग भक्ति, और ये नौ प्रकार की अलग भक्ति। अच्छा, ओम शांति।